ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। आवश्यकता न हो तो यात्रा न करने और सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया सभी से अनुरोध। लहेंदे खोला में गत 24 आषाढ़ को आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध सैफरूबेसी रसुआगढ़ी सड़क खंड पर यातायात फिर से शुरू। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के बीच हुई मुलाकात। एमाले की केंद्रीय समिति की बैठक होगी कल। निर्वाचन आयोग द्वारा रूपंदेही के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में कार्तिक 17 गते होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम स्वीकृत। आश्विन 21 गते उम्मीदवारी दर्ज करने का है कार्यक्रम। और वियतनाम के हालिंग में बस पर्यटक नाव डूबने से कम 38 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। बारिश के कारण अचानक बाढ़ आने के साथ नदी की जल सतह बढ़ने की ओर आगाह करते हुए विभाग ने सजगता अपनाने को कहा है। कल से हुई लगातार बारिश के कारण आए बाढ़ व भूस्खलन के चलते देश के 4 राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है। प्रहरी प्रधान कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक संखुआ सभा स्थित कोशी राजमार्ग, पांचथर स्थित मेची राजमार्ग, रसुआ स्थित पासांग लाम्बू राजमार्ग और रुकुम पश्चिम स्थित जाजरकोट डोलपा भेरी कॉरिडोर पूरी तरह अवरुद्ध है। इसी बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अत्यावश्यक काम के अलावा अन्य कारणों से लंबी यात्रा न करने और सुरक्षित स्थान पर रहने का देशवासियों से अनुरोध किया है। मॉनसून प्रतिकार्य कमांड पोस्ट ने मॉनसून के मौजूदा दौर में बिजली और संचार सेवा अवरुद्ध होने की समस्याओं का समाधान करने का नेपाल विद्युत प्राधिकरण और दूरसंचार प्राधिकरण से आग्रह किया है। कमांड पोस्ट की सिंहदरबार में संपन्न तीसरी बैठक ने मॉनसून की अवधि भर बाढ़ भूस्खलन जलमाव और भारी बारिश के कारण बिजली और संचार सेवा को दुरुस्त बनाए रखने का इन प्राधिकरणों से आग्रह किया है। बीते आषाढ़ 24 गति लहेंदे नहर में आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध सैफरूबेसी रसुआगढ़ी सड़क खंड पर सिंगल लेन से यातायात संचालित हो गया है। रसुआ के प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल ने बताया कि पहले चरण में आज दोपहर से सिंगल लेन सुचारू हुआ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण सैफरूबेसी से रसुआगढ़ी तक दर्जन स्थानों में सड़क क्षतिग्रस्त है और लिंगलिंग में भौगर्भिक स्थिति कमजोर और असहज स्थान होने के कारण नया ट्रैक खोलने में एक हफ्ता लगा। काठमांडू से निकले हल्के वाहन अब सीधे रसुआगढ़ी तक पहुंच सकते हैं। ये जानकारी गलछी त्रिशुली रसुआगढ़ी सड़क सुधार परियोजना ने दी है। परियोजना प्रमुख खड़कलाल श्रेष्ठ ने बताया कि नई नई खुदी हुई मिट्टी के अच्छे से जम जाने के बाद बड़े वाहनों को भी आने जाने की अनुमति दी जाएगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के बीच वार्ता संपन्न हुई। ललितपुर स्थित एमाले के केंद्रीय कार्यालय चैसल में प्रधानमंत्री ओली और पूर्व राष्ट्रपति भंडारी के बीच 1-to-1 वार्ता हुई। वार्ता के बाद पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री और एमाले अध्यक्ष ओली के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सदस्यता पहले ही नवीकृत हो चुकी है। ये वार्ता लगभग 1.5 घंटे तक चली। पूर्व राष्ट्रपति भंडारी के पदमुक्त होने के बाद ये पहली बार था जब वे एमाले मुख्यालय चैसल पहुंची थी। भंडारी ने इससे पहले ही पार्टी राजनीति में सक्रिय रूप से लौटने की घोषणा कर दी थी। इस मुद्दे पर एमाले के सचिवालय और पॉलिट ब्यूरो की बैठकों में चर्चा होने के बाद आज नेतृत्व के साथ औपचारिक वार्ता हुई। शनिवार को हुई पॉलिट ब्यूरो बैठक में अधिकांश सदस्यों ने ये राय दी कि पूर्व राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर रह चुके व्यक्ति को पार्टी की सक्रिय राजनीति में वापस नहीं आना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। एमालेकी केन्द्रीय समितिकी बैठक कल सुबह 11 बजे ललितपुर के च्यासल स्थित पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित होगी। पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम के अनुसार इस बैठक में पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव, संगठनात्मक कार्यों की रिपोर्टिंग, विधान महाधिवेशन की तैयारी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक कल और परसों दो दिनों तक चलेगी। प्रतिनिधि सभा की कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले नेपाल के मानवाधिकार समीक्षा रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार करने और संबंधित समिति तथा कानून समिति में पेश करने का सरकार को निर्देश दिया है। समिति ने सूचकांक आधारित निगरानी और प्रगति रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करने का निर्देश प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय को दिया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि संविधान में उल्लिखित मानवाधिकार संबंधी कई कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी और बनाने की आवश्यकता है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने बताया कि भेदभाव समाप्त करने और सभी के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करने हेतु कई कानून बनाए जा चुके हैं और प्राथमिकता के आधार पर अन्य कानून निर्माण प्रक्रिया में हैं। निर्वाचन आयोग ने रूपंदेही प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में 17 कार्तिक को होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम मंजूर कर दिया है। 21 आश्विन को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में उम्मीदवारों का नामांकन होगा। उसी दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसी तरह 24 आश्विन को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक अंतिम उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी। दोपहर 3 से 6 बजे तक उम्मीदवारों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 17 कार्तिक को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा। ये उपचुनाव रूपंदेही क्षेत्र नंबर 3 के पूर्व सांसद दीपक बोहरा के 19 चैत को निधन के बाद रिक्त हुए सीट के लिए आयोजित किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वियतनाम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों से भरी एक नाव पलटने से कम 38 लोगों की मौत हुई है। वियतनाम के उत्तर में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल हालोंग खाड़ी में हुई इस घटना के बाद कई लोग अभी भी लापता है। रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम की राजधानी हनोई से अधिकतर यात्री आए थे। बचाव कर्मियों का कहना है कि 11 लोगों को पानी से जीवित निकाला जा चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना होने का जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। आवश्यक न हो तो यात्रा न करने और सुरक्षित स्थान पर रहने का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया सभी से अनुरोध। लेहंदेखोला में गत 24 आषाढ़ को आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध सैफरुबेसी रसुआगढ़ी सड़क खंड पर यातायात फिर से शुरू। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के बीच हुई मुलाकात। एमाले की केंद्रीय समिति की बैठक होगी कल। निर्वाचन आयोग द्वारा रूपंदेही के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में कार्तिक 17 गति को होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम स्वीकृत। आश्विन 21 गति उम्मीदवारी दर्ज करने का है कार्यक्रम। और वियतनाम के हालिंग बे में पर्यटक डूबने से कम 38 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।